श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सप्तम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 31। नते विदु स्वार्थगतिं हि विष्णुम् दुराशय ये बहिराथ मानिनः अंधायथांधायर उपनीयमानस तेपीशतांत्र्याम उरुदाम निबद्धाः। नते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णुम् दुराशया ये बहिराथ मानिनः अंधायथांधायर उपनीयमानास तेपीशतांत्र्याम उरुदाम निबद्धाः। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा लोग जो इनकी भौतिक भोग बुद्धि की चेतना से बिल्कुल फंस गए हैं इस भौतिक संसार में, और इसलिए जो एक नेता या गुरु ने ग्रहण किया जो उन जैसे अंधा है, जो बाह्यिक विषय सुख से आसक्त है, तो ऐसे लोग समझ नहीं पाते कि जीवन का लक्ष्य है भगवान का धाम वापस जाना, वहाँ पर भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए। जैसे अंधे लोग एक दूसरा अंधे लोग का मार्ग दर्शन लेने से सन्मार्ग से भ्रष्ट होते और इस प्रकार गिल जाते हैं, इस प्रकार भौतिक जगत के आसक्त होने वाले लोग दूसरा ऐसे व्यक्ति से कर्म सकाम कर्म की राशि से बद्ध होते हैं। वो बंधन जो बहुत मजबूत है, और इस प्रकार वे पुनः पुनः इस भौतिक जीवन में माया के त्रिताप से दुख मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य थोड़ा लंबा ही है, ठीक है, जो भी हो, जिसलिए सदैव भक्तों और असुरों में मत भेद होते हैं। हिरण्यकशिपु जब उस का पुत्र प्रहलाद महाराज से निंदित हुआ, वो हिरण्यकशिपु तो आश्चर्य लगने वाले नहीं होना चाहता, क्योंकि प्रहलाद महाराज उनका जीवन शैली से अलग था। फिर भी हिरण्यकशिपु बहुत क्रुद्ध हो गया है, और उसका पुत्र का दमन करना चाहता था, क्योंकि उसका पुत्र उसका गुरु या शिक्षक जो महान आचार्य शुक्राचार्य के ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया था। शुक्र शब्द का अर्थ है शुक्र, और आचार्य का मतलब शिक्षक या गुरु, कुल गुरु, ऐसे कुल गुरु जो है, जो वंश परंपरा में है, अनादि काल से ये प्रथा हो रही है, परंतु प्रहलाद महाराज उस प्रकार शुक्र गुरु या वंश वंश परंपरा के गुरु का स्वीकार करना के लिए राजी नहीं था, और राजी नहीं था ऐसे गुरु से शिक्षा लेना। वास्तविक गुरु है श्रोत्रिय, जो परंपरा में से पूर्ण ज्ञान सुन लिया है, ग्रहण किया है। इसलिए प्रहलाद महाराज ऐसे कुल गुरु का स्वीकार नहीं किया। ऐसे गुरुजन भगवान विष्णु में कुछ भी रुचि नहीं लेते हैं, अपितु उनकी आशा होती है भौतिक सफलता में। बहिरात्मानिनः, बहि शब्द का अर्थ है बहा, अर्थ का मतलब अर्थ, और मानिना का मतलब बहुत गंभीरत्व से ग्रहण करना। सामान्यतः लगभग सभी लोग अबोध है वैकुंठ जगत के बारे में, इस भौतिक ब्रह्मांड का 40 करोड़ की सीमा में 400 करोड़ इस 400 करोड़ से सीमित भौतिक ब्रह्मांड में भोगविलासी जन का ज्ञान है, जो इस जगत या सृष्टि का अंधकार का भाग है। वे नहीं जानते कि इस भौतिक संसार के परे है आध्यात्मिक जगत। जो कोई भगवान का भक्त नहीं है समझ नहीं पाते कि आध्यात्मिक जगत ही है। ऐसे गुरु जो केवल इस भौतिक संसार के बारे में तत्पर रहते है, इस श्लोक में अंध जैसे घोषित होते। ऐसे अंधजन दूसरे बहुत अंध अनुगामी सच ज्ञान के रहित ऐसे लोकजन का मार्ग दर्शन दे सकते, जो जिनके पास सच ज्ञान नहीं है भौतिक संसार के बारे में। परंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त ऐसे अंधजन को ग्रहण नहीं करते। ऐसे अंध शिक्षक जन जिनका पूरा ध्यान इस बाह्यिक भौतिक संसार में है, सदैव इस भौतिक प्रकृति के जुड़ बंधन में रहते हैं। ये श्लोक श्री प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। प्रहलाद महाराज तो 5 वर्षीय बालक होते हुए भी तो पूर्ण सिद्ध भक्त है, और इसलिए इनके पास पूर्ण सिद्ध ज्ञान था। पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान है केवल इस भौतिक संसार के बारे में नहीं है, वैकुंठ जगत के बारे में भी है। और वास्तव में वो ज्ञान जो इस भौतिक संसार के बारे में है वो सब अज्ञान है, क्योंकि इस भौतिक संसार की अभिव्यक्ति अस्थायी है, मायिक है। वास्तविक जगत है भगवान का जगत। परंतु जो हिरण्यकशिपु जैसे असुर है, सत्संग में आने के भी सेल फोन बंद नहीं करते, नहीं जो असुर है तो उनमें विश्वास नहीं है कि विष्णु जीवन का लक्ष्य है। न थे विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, स्वार्थ, हम सब इस शब्द स्वार्थ सुन लिया है। स्वार्थ सामान्यता इस शब्द से हम सोचते कि स्वार्थ शब्द का अर्थ है पैसा, ज्यादा पैसा प्राप्त करना, वो ही स्वार्थ है। तो ऐसे सोचना गलत है। स्वार्थ का मतलब स्व मेरा, अर्थ अर्थ का मतलब जो मेरे लिए अच्छा है। तो क्या अच्छा है मेरे लिए? तो पैसे तो अच्छा है। सब जगत के लोग पैसे के पीछे ही है, तो यदि मैं काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वो मेरा स्वार्थ होगा। तो लोग ऐसे सोचते क्यों? और प्रहलाद महाराज ऐसे सोचना ग्रहण नहीं करते क्यों? क्योंकि स्व मैं और मेरा, मैं कौन हूं, इस मैं और मेरा कौन हूं का विषय में यदि हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं तो हमारा पूरा जीवन उल्टा दिशा में हो जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ऐसे लोग जो इनका जीवन का स्वार्थ की गति के बारे में अच्छी तरह नहीं जानते हैं, ऐसे लोग अंधा जैसे हैं। और पुनः पुनः भौतिक भोग विलास करने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु कुछ वास्तविक सुख नहीं मिलते। जो भौतिक भोग विलासी है, मतलब लगभग सभी लोग जो संसार में हैं, उनकी बड़ी आशा है कि काम करने से, प्रयास करने से मैं ज्यादा पैसा मिलूंगा और उससे मैं सुखी होऊंगा। तो वो आशा प्रहलाद महाराज बोलते वो दूर आशा है। क्यों क्यों हम सुखी नहीं होंगे यदि हम ज्यादा पैसे मिलेंगे? नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा का धर्म है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु की सेवा करना। तो ये सरल बात नहीं समझने से इस भौतिक संसार में हम सभी समस्याओं की सृष्टि होती है। एक छोटी बात या दो छोटी बात, पहले है कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं सनातन आत्मा हूं। और दूसरी बात है कि मैं आत्मा हूं O Paramatma, he Bhagavan, Sri Vishnu. To jo log Hindu parivar mein janma lete hain, to ve samanyata vishwas karte hain ki punarjanma hote hain. Kabhi kabhi kuch log mujhse puchte hain ki kya aap punarjanma vaad mein vishwas karte hain. To mera is prashna ka mera yahi uttar hai ki vishwas wohi baat nahi hai. Yadi punarjanma hota hai to mera avishwas se wo ki wo nahi hoga to aise nahi. Matlab yadi mai vishwas ya avishwas wohi baat nahi hai. Agar hoga to na hoga to na hoga. To isliye yehi salaha hai. Athato brahma jignyasa. Is manav janma mein hame brahma gyan ke bare mein puchna chahiye. Kya sach hai? Kya adhyatmik hai? Hum kya keval is sharir hai aur hum aur kuch bhi hai? Param satya kya hai? Ye sab puchna chahiye. To brahma gyan mein pahila upadesh hai ki hum sanatan atma hai. Ye kisi ka rai ka vishay nahi hai. Yehi sach hai. Aajkal log vaigyanik praman lena chahte hai. To vaigyanik praman bhi hai. Aur uske alawa aur bhi uttam gyan hai shastra. Jaise Bhagavad Gita mein Bhagavan Krishna kehte hain alag alag prakar se Bhagavan Krishna Arjun ko samjhaye ki atma sanatan hai avinashi tu tadvidi yena sarvamidam tatam. Jo is sharir mein sab ka sharir mein sarvavyapi hai wo chetna ka shrut hai atma jivatma. To Bhagavad Gita mein Shri Krishna alag alag udaharan dene se Arjun ko vishwas kiya ki atma hi hai sharir wo asthayi hai aur atma sthayi hai. Isliye hame samajhna chahiye ki sharir ka arth hamara vastavik swarth nahi hai kyunki hum sharir nahi hai. Aur isliye aisi asha poshan karna ki sharirik sukh se bhautik vishay se main sukhi hunga. Indriya sukh se mera jivan purna ho jayega, jivan ki safalta hogi. Aise sochna Prahlad Maharaj ki bhasha mein durasha hote. Matlab wo ek prakar ki asha hai ki mujhe jyada paisa prapt karna hai aur aise main sukhi hunga, main sundari yuvati se shaadi karunga, usse main sukhi ho jayega. Oh, main bada ameer ho jayega aur sab log mujhko bahut samman denge, samman denge. Is prakar main sukhi hunga. Ye sab bhautik aashayein durasha. Matlab durasha ka dur ka matlab kharab. Durasha ka matlab wo aasha to kabhi purna nahi hogi. Aur purna hote hui bhi purna hone se hum santush nahi honge. To sab log to bade log hone chahte, paise wale log hone chahte, lekin sab log to aise nahi hote. purjanam ka karma ka phal ke anusar koi koi bada vyakti hote, koi koi chote aur koi koi ekdam niche hote. To ye sab karma phal ke anusar nirbhar karte. To sab log ki aasha hai ki main sukhi hunga is bhautik sansar mein. Parantu visheshkar adhunik jamane mein jyada log to bahut kaam karke bhi bahut aasha karke bhi to kuch bhi sukh nahi milte to khali sangharsh karte puri zindagi mein aur jo bade log hai jinke paas kro dhiram hai aur bada marble mahal mein rehte hai to aise log bhi sukhi nahi hai unki aashaen puri hote hue bhi apurna rehte hai kyun yadi kisi vyakti ki aasha hai ki main bada aame vyakti ban jaunga aur wo aasha to puri hote to phir bhi bhautik aashaan bhautik chetna ka yahi lakshan hai ki jitne bhi dhan sampatti hum milte hai to usse hum kabhi bhi santush nahi hote. Aap dekhiye wo bharat mein bade bade vyapare ka naam prasiddh hai jaise Ambani, Hinduja, Birla, Tata, bade bade log. Inke paas pray asim dhan hai. To phir bhi har ek roz din bha vyast rehte hai. Kya karte hai? Vyapar. Unka vyapar karna ka kya prayojan hai? Inke paas jitne paisa hai ki yadi har ek roz crore rupiya ka kharcha karta tha to unka maran ke pahle wo paisa samapt nahi hota. To phir bhi vyast rehte kyun? Kyunki hazar hazar crore rupiya unke paas hote hue bhi bhautik aashaan to kabhi bhi puri nahi hote. Aur bhi chahte, aur bhi chahte, aur bhi chahte. Isliye wohi aasha ki main sukhi hunga is bhautik sansar mein usko duraasha bolte. Wo sab mayik aasha hai. Isliye Prahlad Maharaj kehte hai ki hamara vastavik swarth hoga Bhagwan ki seva mein. Bhagwan Vishnu. Kaun hai Bhagwan Vishnu? Inki seva mein. Hamara sab kuch ho jayega. Sarva siddhi. To log to nahi jante. Kyun? Kyunki hum jo andha hai, arthat hum jo nahi jante, hamara kalyan kaise hoga? Hum dusre andha janon se margdarshan lete. Aaj kal sab bache ka school jana hai, aur TV bhi dekhte, internet par. Ada jivan rehte internet par. Aur ye sab madhyam se sukshma ya paroksha roop se is upadesh milte hai. Kaam karo, paisa kamao, sukhi ho bhautik sansar mein, successful ban jao. Successful ka matlab dusre log se jyada paisa kamana, ye successful shabd ka arth hai. तो दिन रात काम करने है लेकिन पैसा 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 कमाओ, यही सक्सेसफुल जीवन है। तो यही मैसेज होते, तो शायद स्कूल में कोई ऐसे स्पष्ट नहीं कहते है कि पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य है, लेकिन कम से कम सूक्ष्म रूप में सब ऐसे सोचते और साथ साथ मायिक प्रचार, बहुत प्रकार का माया प्रचार, मायिक प्रचार होते हैं। आजकल भौतिक भोगविलासी जन का पूरा विश्वास है तथाकथित विज्ञान साइंस में, साइंस से हम सुखी होंगे, साइंस हमारा भरोसा है। पूर्व काल में लोग जो मूर्ख जो थे, जिनके पास वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था, तो ऐसे लोग का विश्वास था भगवान या गॉड या अल्लाह में। तो अभी हम बहुत प्रगत हो गया और हमें समझ गए हैं कि साइंस ही सब कुछ है, कोई भगवान को विश्वास करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग बोलते हैं और बोलते हैं कि हाँ अभी हम बहुत प्रगत है, हम नास्तिक बन गए हैं, लेकिन देखिए कि बहुत बहुत पहले ही हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा नास्तिक था। वास्तव में हिरण्यकशिपु का विश्वास था विष्णु में, एक प्रकार का विश्वास था। हिरण्यकशिपु का विश्वास था कि विष्णु ऐसे व्यक्ति है, और कुछ लोग बोलते कि वो भगवान है, लेकिन वो मुझसे डरते हैं इसलिए मेरे सामने नहीं आते। वो नहीं जानता था कि हिरण्यकशिपु के सामने वो विष्णु भगवान आने वाले हैं, लेकिन अभी तक समय तो पक्का नहीं हो गया। वो हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन मिलने वाले होंगे, लेकिन किस प्रकार वो हिरण्यकशिपु का पसंद नहीं होगा। तो हिरण्यकशिपु जानता था कि विष्णु ऐसे व्यक्ति है, परंतु हिरण्यकशिपु का विचार में कि इंद्र चंद्र वायु ये सब देवता है, और सब देवताओं के नेता है विष्णु, और मैं ये सब देवताओं के ऊपर विजयी हूँ, और वो विष्णु तो भाग गए है मुझसे डर के। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु का विश्वास था कि विष्णु जैसे एक व्यक्ति है, परंतु कि विष्णु भगवान है, सर्वशक्तिमान है। हिरण्यकशिपु का विश्वास नहीं था, क्योंकि हिरण्यकशिपु का विश्वास था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। तो प्रमाण था कि हिरण्यकशिपु सर्वशक्तिमान है, वो प्रमाण है कि इंद्रादि देवताओं दमन किया है हिरण्यकशिपु ने, और ब्रह्मा विष्णु महेश वो कुछ नहीं किया, इसलिए हिरण्यकशिपु का विचार था कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं किया, इसका मतलब है तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु की सभी आशा पूरी हो गई है। उसकी आशा थी कि मैं सर्वशक्तिमान होऊंगा, और उसका छोटा विचार में उस सर्वशक्तिमान बन गए हैं। छोटा विचार क्यों, वो पूरा जगत के लोग के ऊपर विजयी हो गया है, सब कुछ जो जगत में है उसका वश में था, वो ऐसे सोच रहा था, लेकिन वो ही नहीं जानता था कि स्वार्थ गति विष्णु है। विष्णु भगवान वे ही करता है, वे ही निरंतर है, और कि हिरण्यकशिपु सर्वशक्तिमान जैसे है वो तो सच नहीं है। विष्णु भगवान तो उसको थोड़ा समय दिया था जिसमें वो मैं एक अहंकार से सोच सकता कि मैं भगवान हूं, और इसके बाद भगवान विष्णु नरसिंह रूप में आएंगे और हिरण्यकशिपु को प्रमाण देंगे कौन वास्तविक भगवान। तो हिरण्यकशिपु की सभी आशाएं पूरी होते हुए भी तो असंतुष्ट था, इसलिए वो दुराशा दो प्रकार ही है। एक है कि सामान्यता किसी व्यक्ति में वो आशा जो है वो पूरी नहीं होती है, इसलिए दुराशा बोलते हैं, क्योंकि हम चाहते 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 लेकिन वो जो हम चाहते तो नहीं मिलते। और दूसरी बात है कि जो हम चाहते हैं तो उसको मिल के भी मिलने से हम संतुष्ट नहीं होते, और वो प्रमाण है हिरण्यकशिपु। बहुत कठिन तपस्या करने से, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद से अपूर्व शक्ति और प्रभाव में, और इसलिए पर्याप्त बलवान था ऐसे पद प्राप्त करना जिससे इंद्र चंद्र इत्यादि देवताओं की शक्ति सब कुछ केवल वो एक व्यक्ति में था। इंद्रदेव वरिष के देवता है, वायुदेव हवा का देवता है, चंद्र चंद्रमा के देवता है, परंतु उनके सब अधिकार हिरण्यकशिपु स्वयं लिया है, और इस प्रकार उनका उसका विचार और सब जगत निवासियों का विचार में तो हिरण्यकशिपु भगवान जैसे ही बन गए हैं। तो फिर भी वो संतुष्ट नहीं था, और कुछ समय में भगवान विष्णु वो हिरण्यकशिपु का राज्य उसकी माया बंद करने के लिए आया है। तो हम सब इस भौतिक संसार में हिरण्यकशिपु का अनुरूप होना चाहते हैं। वो हिरण्यकशिपु बड़ा राक्षस था, मैं छोटा राक्षस हूँ, या बड़ा भोग विलासी था तो जितने भी संभव हो मैं भोग विलासी बन जाऊंगा, और वो मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो लोग नहीं जानते हैं कि बड़ा होते हुए भी उससे हमारा वास्तविक स्वार्थ प्राप्ति नहीं होते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं, और इस हॉल के बाहर वो सब लोग जो है इस विचार नहीं करते, और शायद इस हॉल के अंदर में इस भी सब सहमत नहीं है। लगभग सभी गुरु भी है जो प्रचार करते हैं, तो इस प्रकार प्रचार करते हैं, तो मुझसे आशीर्वाद ले लो, मुझसे मंत्र ले लो, इस मंत्र का दाम इतना सा है, तो इस मंत्र से या मेरा कर स्पर्श से या मेरे माध्यम से तुम आशीर्वाद मिलेंगे, जिससे तुम्हारा भौतिक जीवन और विषय सुख सब पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही धार्मिक नेताओं अधार्मिक है, अंधा है। तो इस प्रकार गुरु बहुत जनप्रिय है। गुरु का मतलब जो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, परंतु आजकल गुरु का शब्द है एक व्यक्ति जो कुछ जादू दिखाने से या कुछ बकवास बोलने से लोग को मोहित करते हैं और लोग को मूर्ख अंधा शिष्यों को ऐसे मार्गदर्शन देते हैं जिससे इनके कहते हुए शिष्यों की आशा कि मैं इस भौतिक संसार में सुखी होऊंगा, वो सभी आशा बढ़ेगी। तो ऐसे गुरु तो कोई गुरु नहीं है। सद्गुरु है जो हमको मार्गदर्शन देते हैं जिससे हमारा वास्तविक स्वार्थ हो जाएगा। तो वास्तविक स्वार्थ क्या है? पूर्ण सनातन आनंद प्राप्ति। वो कैसे संभव हो? भगवान विष्णु जो पूर्ण सच्चिदानंद है, इनकी समर्पित सेवा और भक्ति में जीवात्मा जिसका धर्म है वो भगवान विष्णु की सेवा करना, वो सेवा करने से हमारा पूरा स्वार्थ होता है। स्वार्थ का मतलब नहीं है जो मैं मिलूंगा, मुझको पैसा दो, मुझको यश कीर्ति दे दो, मुझको बलवान शरीर या सुंदर शरीर दे दो। तो यही सब प्राप्त करने से हमारा स्वार्थ नहीं होते, क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा का प्रयोजन हमारा प्रयोजन है। और ये सब शारीरिक या मानसिक प्रयोजन वो सब तो वास्तविक प्रयोजन नहीं है। तो पहले आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सोपान यही है, यही समझना कि मैं जीवात्मा हूं, परमात्मा है भगवान विष्णु, और इसलिए सब कुछ इस भौतिक संसार में जिसमें हमारी आशा है वो सब कुछ तो नहीं है। पूरे जगत में सब कुछ जो है, यदि हम मिलेंगे सब कुछ जो है तो एक बड़ा जिफर होते, कुछ भी नहीं। इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं है, केवल यही है वो सुयोग संयोग भगवान विष्णु की सेवा करना, और उससे हमारा परम कल्याण होता है। तो लोग तो नहीं जानते और जानना की इच्छा भी नहीं है, इसलिए वे दृढ़ता से मायिक भवबंधन में रहते हैं। और ऐसे लोग का हाल के बारे में प्रहलाद महाराज बोलते हैं। प्रहलाद महाराज है सद्गुरु, क्योंकि सच ज्ञान प्रदान करते हैं, गुरुगिरी नहीं करते। तो खाली कुछ जादू देखने से और मीठी बात बोलने से लोगों को का चीटिंग नहीं करते, धोखा देने वाले नहीं है प्रहलाद महाराज, जो सच है बोलते। यही समस्या है कि अधिकांश व्यक्ति सच सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है, वो मायामय है, इसलिए झूठ बोलना चाहते हैं जो सब उल्टा है, तो उसको ग्रहण करना चाहते हैं। जो उनका वास्तविक स्वार्थ नहीं होगा उसके बारे में सुनना चाहते हैं। परंतु जो धोखा देने वाले नहीं है, जो ढोंगी कहते हुए गुरु नहीं है, तो प्रयास नहीं करते हैं लोगों को ऐसी शिक्षा देना जिससे वे मानसिक और शारीरिक सुख मिलेंगे, क्योंकि ये सब मायिक सुख ही है, उससे कुछ वास्तविक सुख नहीं है। हृदय का आनंद नहीं होता वो सबसे, तो हृदय का पूर्ण शाश्वत आनंद होते हैं भगवान विष्णु की समर्पित सेवा और भक्ति में। तो इसलिए जो प्रहलाद महाराज के अनुगामी है वैष्णव परंपरा में, वे प्रहलाद महाराज की वाणी का प्रचार करते, लोग सुनेंगे ग्रहण करेंगे कि नहीं वो दूसरी बात है। अधिक संभव नहीं था कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का उपदेश ग्रहण करेंगे, तो फिर भी प्रहलाद महाराज प्रयास किए थे। वो असुर वार्य सबसे बड़ा असुर हिरण्यकशिपु को उपदेश प्रदान करना। तो आशा है इस सत्संग में हिरण्यकशिपु जैसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है, तो फिर भी हम सब हिरण्यकशिपु की चेतना से, भावना से भावित होते, वो प्रभाव है सबका मन में। हम भक्ति के लिए आया है, परंतु हमारा मन में दूसरा तरंग भी चलता है। हैप्पी हो जाओ भौतिक संसार में, ऐसा प्रभाव होते, माया का प्रभाव है हमारा मन में। इसलिए हम बार बार सुनना चाहिए कि प्रहलाद महाराज जो कहते हैं वो बात का ग्रहण करना चाहिए, और हिरण्यकशिपु का प्रचार जो विशेष का आधुनिक जमाने में बहुत घोषित होते हैं, वो प्रचार का ग्रहण करना नहीं चाहिए। उससे हमारा कुछ भी वास्तविक कल्याण कभी भी कैसे भी नहीं हो सकते। हमारा वास्तविक कल्याण होगा भगवान श्री विष्णु की सेवा में, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। हरे कृष्णा। समाप्त हो गए छोटी सी कथा, यदि किसी का प्रश्न हो तो अभी कुछ है। दूसरा माइक है नहीं, अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए। हाँ, आपका प्रश्न है, हाँ तो बोलिए, थोड़ा सामने आ जाए और माइक से बोले।
जानते हैं कि नारद मुनि जो है हमारे आचार्य में से हैं, महाजन हैं, फिर भी वो हिरण्यकशिपु को बोलते हैं। पुराणों में सुना है कि वो भी हिरण्यकशिपु को भगवान मानने लगते हैं, तो हम ऐसे कैसे समझे ऐसे चीजों को?
तो आप वो कि नारद मुनि तो हिरण्यकशिपु को सम्मान दिए थे, वो भगवत पुराण में है। वो कहाँ से वो बात सुने? भगवत पुराण से, श्रीमद् भागवत से।
नहीं महाराज, बहुत इसके में सुना है मैंने, एग्जैक्ट मुझे
श्रीमद् भागवत में भी है और उसमें उसका कारण वो विचार भी है। कारण है वो व्यवहारिक, जैसे हम जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, हम जगत के नेताओं को सम्मान देते हैं, जिससे हम हमारा काम कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते हैं। इसलिए एक दूसरी बात भी है कि जो ये सांसारिक रीति है कि बड़े लोग को सम्मान देने हैं, जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वो वर्णन है कि सनातन गोस्वामी वो गोवध करने वाले नवाब को सम्मान देते थे, क्योंकि वो नवाब तो राजा जैसे थे। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं नारायण चंद राधिपम, भगवान के प्रतिनिधि है राजा। तो लोग तो ऐसे बड़ा पद मिलते हैं तो पूर्व जन्म का पुण्य कर्म का फल से, और इसलिए रीति है संसार में कि जो बड़े हैं उनको सम्मान देना है, वो सामान्य रीति है, आध्यात्मिक रीति नहीं है। परंतु जब तक हम इस भौतिक संसार में है तब तक हमें विशेषकर जो गृहस्थ भक्त है या प्रचारक है उनको भौतिक रीति को पालन करना चाहिए। जो पूरा अवधूत है बाबा जी जैसे भक्त, उनके लिए किसी भौतिक व्यवहार पालन करने का जरूरत नहीं है। जो इस भौतिक संसार में प्रचार करने के लिए या किसी भी कारण के लिए कुछ भी करते हैं तो भौतिक संसार के नियमों के अनुसार करना पड़ेगा। तो नारद मुनि प्रचारक थे और असुरों भी उनको विश्वास करते थे। जैसे नारद मुनि जब कंस के पास गए थे और बोला कि उन्होंने कहा कि कंस को बोले कि वो शिशु जिससे आपका वध होगा तो उसका जन्म हो गया है, वो कंस को बोला। और कंस तो नारद को स्वागत दिया था। एक उदाहरण है।
हरे कृष्णा महाराज, मेरा नाम विजय पाठक है। आपने जैसा अभी आध्यात्मिक रीति के हिसाब से बताया कि भौतिक संसार में रहते हुए उनके रीति के हिसाब से भी चलना चाहिए, मेरा प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ?
ज्योतिष सीखना चाहिए। ज्योतिष सीखना चाहिए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं वो क्या बोलते हैं, रेखा विचार करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? हाथ परीक्षा, हस्त परीक्षा। तो मैं देख के बोलता हूं कि कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सबका ऐसे है। बोलता हूं कि आप यदि कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो आपकी भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसे ही बोलता हूं। तो मैं आपको ज्योतिष की शिक्षा दे दिया था पूरी। हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो।
और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है?
अच्छा कितने लोग यहाँ सिंधी प्रोग्राम रेगुलर अटेंड करते हैं? सो ताके बगल कुछ प्रश्न पूछो मुझे, अगर हिंदी में तो सिंधी में पूछो, असली बात सेट करना चाहिए, अगर हिंदी गाना नहीं गाना है कुछ तो
सब सिंधी बोलने वाले तो हिंदी भी बोलते हैं ना? Is it?
कहने का तात्पर्य है कि आप प्रश्न पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं करें, सामने खड़े होकर पूछ सकते
हैं। प्रश्न आ गया
रामचंद्र भगवान महेश की पूजा की क्यों? महेश शिव, क्योंकि रामचंद्र भगवान तो नारलीला किया है, आदर्श नार जैसे लीला विलास किया है, इसलिए वो रावण तो शिव के उपासक था और रामचंद्र भगवान रावण के वध करने वाले थे, तो इसलिए किया है। और शिव भी रामचंद्र भगवान की पूजा करते, राम नाम जपते, भगवान कृष्णा वे भी इनकी गृहस्थ लीला में देवताओं की पूजा करते हैं, किस लिए? वो सामान्य लोग का मार्गदर्शन देने के लिए, जो पूरा भक्त नहीं है उनके लिए देव देवी पूजा करना अच्छा है, जो मूर्ख है उनके लिए देव देवी पूजा करना अच्छा है। तो ज्यादा लोग इस भौतिक संसार में मूर्ख है, तो उनका कल्याण के लिए भगवान कृष्णा वो देव देवियों की पूजा की। और बाद में भगवद गीता में सबको बताया कि ये सब देव देवी पूजा चार के केवल मेरी पूजा करो, सर्वधाम परित्यजामा मे कम शरणम व्रज। तो हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज, रिगार्डिंग दिस योर लेक्चर रिगार्डिंग दिस हिंदुजा अंबानी, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस
हिंदुजा में अंबानी, मतलब इनके विरोध मुझे कुछ नहीं है, तो खाली उदाहरण के लिए बोला था।
वो लोग इतना भौतिक जीवन में हैं कि वो लोग पैसे इतना बनाना है, फिर भी वो पैसे दे आर गिविंग टू इस्कॉन एंड अदर चैरिटेबल और ट्रस्ट, वो जो लक्ष्मी जो जेते जो जो कमाई है, तो उनको तो भौतिक
आध्यात्मिक जीवन को उनका फायदा होएगा क्या नहीं? मतलब वो बड़े लोग जो कुछ पैसे देते आध्यात्मिक या सामाजिक ऐसे दान देते हैं, उससे उनका फायदा होते, लेकिन माया भी बड़ा होते। वो सब अन्य है कि जो बड़ा पैसे वाले है तो कुछ दान देते हैं, छोटे लोग भी दान देते हैं, उससे फायदा होते है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जो दान देते हैं तो उससे सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, ऐसे तो नहीं है। और विशेषकर जिनके पास बहुत बहुत धन है तो दान नहीं देने से पाप होते, उनका विशेष कर्तव्य है दान देना। हरे कृष्ण। Questions going. Supposed to be finished at 9:30. Sometimes devotees take advice from. Kuj bhakt, dusre bhakt jo jyotish hai unse salah lete hai. तो कैसे ज्योतिषी भक्त हो सकते नहीं, जो गृहस्थ भक्त है तो ज्योतिष से ज्योति और से कुछ सलाह ले सकते, लेकिन आपको सीखने का जरूरत नहीं। अगर कोई है जो ज्योतिष में निपुण है और भक्तों को सलाह देने के लिए उपयोगी है, तो ऐसे भक्त से आप सलाह ले सकते। लेकिन जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति करना, और कृष्ण भक्ति में बहुत कुछ सीखना है, और ज्योतिष सीखना वो बहुत बहुत बड़ा विषय है, बहुत विशाल विषय है। तो कृष्ण भक्ति आने के पहले अगर किसी के पास वो ही ज्ञान है, तो वो ज्ञान से भक्तों को सलाह दे सकते। लेकिन यदि आप भक्ति प्राप्त करने के पश्चात वो विशाल ज्ञान प्राप्त होने चाहते, तो उसका जरूरत नहीं। आप श्रीमद् भागवत अध्ययन कीजिए, वो बहुत विशाल शास्त्र है ना, तो वो सब सीखना चाहिए। ओके,
और कोई प्रश्न है? महाराज, मुझसे किसी ने, हरे कृष्ण महाराज, मुझसे किसी ने पूछा कि भाई भूख किसको लगती है?
भूख
किसको लगती है?
किसको
लगती है ना? आत्मा को लगती है।
आत्मा भूख लगते है आत्मा या शरीर? तो ऐसे ही कुछ अनुभव करना वो चेतना से होते ना। मृत शरीर में भूख नहीं होते, उच्च किसी भी भावना या इच्छा वो सब चेतना से आते हैं, और चेतना आत्मा का है। परंतु वो आत्मा जिसमें भावना होती है इच्छा होती है, वो आत्मा अभी इस भौतिक संसार में अहंकार से सब कुछ करते हैं। तो वो आत्मा से चेतना इच्छा भावना ये सब होते हैं, परंतु अभी इस भौतिक संसार में वो आत्मा का स्वभाव आच्छादित हो गया है अहंकार से। तो ये सब भौतिक भावना, आशा, चेतना, वो सब कुछ जो है, तो उसका स्रोत है आत्मा। परंतु आत्मा का वास्तविक स्वभाव है कि उनकी चेतना, इच्छाएं, वो सब कुछ आध्यात्मिक होते। तो आत्मा से आते हैं, परंतु अहंकार में से आते हैं। वो आत्मा की कोई इच्छा नहीं है भौतिक सुख प्राप्ति के लिए, वो अहंकार से ऐसे होते। आत्मा से आते हैं, लेकिन अभी आत्मा का हाल तो विकृत हो गया है, लेकिन भौतिक प्रकृति से भूख लगना या किसी भी आशा करना तो भौतिक प्रकृति से वो नहीं हो सकता, चेतना से आते हैं। और चेतना क्या? आत्मा का स्वभाव है। लेकिन आत्मा की कोई इच्छा नहीं, शुद्ध आत्मा में कोई इच्छा नहीं है, भौतिक की कोई इच्छा नहीं, केवल ये आध्यात्मिक इच्छा है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो इसलिए समझना चाहिए कि वो आत्मा उस प्रकार इच्छा करते और उस प्रकार लगते भावना होते हैं, परंतु वो आत्मा की वास्तविक इच्छा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो उस प्रकार इच्छा नहीं करते। तो आत्मा का स्वभाव तो लुप्त, शुद्ध वास्तविक स्वभाव तो लुप्त हो गया है, और इस प्रकार हम पागल जैसे इच्छा करते, भावना मिलते, चेतना मिलते, ओ क्या है, ओ पिशाची फैले जैन मत्थी छन्न है मायाग्रस्त जीव है से भावोदय। हम भूतग्रस्त जैसे हैं। तो यदि हम ऐसे पागल व्यक्ति देखते हैं और एक आदमी जो पहले तो ऐसे साधारण व्यक्ति था लेकिन पागल हो गया है और ऐसे करते है तो अपना बाप को मारना चाहते हैं, तो कौन ऐसे चाहते है? वो व्यक्ति ऐसे करते है? वो व्यक्ति जो पहले नॉर्मल जैसे था और अभी एकदम पागल हो गया है, तो कौन ऐसे होते? वो व्यक्ति वो करते है तो बाप का मारना करने के लिए आते, कौन ऐसे करते है? वो आदमी करते लेकिन वो अभी तो पागल हो गया है। वो आदमी करते लेकिन उसका दिमाग तो ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं।
हाँ, जय गोविंद भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।